ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या है 24। मैत्रेय उवाच इति अध्वरे दक्षं अनुद्य शत्रुहन क्षितौ उदीचिं मिशसाद शांतवाक स्पृष्ट्वा जलं पीतदु कुलसंहृता निमिल्य रक् योगपथं समाविशत। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षीतारुदीचिं मिषता शान्तवा स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमिल्य योगपथं समाविशत। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षीतावुदीचिं मिषसाद शान्तवा स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमिल्य द्रव्योगपथं समाविशत। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षीतावुदीचिं मिषसाद शान्तवा स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमिल्य द्रव्योगपथं समाविशत। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार अध्वरे यज्ञ स्थल में दक्षम दक्ष को अनुद्य बोलकर शत्रुहन हे शत्रुओं के विनाश करता क्षितौ पृथ्वी पर उदीचिं उत्तर की ओर निशसाद बैठ गई शांतवा चुप होकर स्पृष्ट्वा छूकर जलम जल पीतदुकूल संभुता पीले वस्त्रों से अच्छा निमिल्य मुंदकर द्रक दृष्टि योग प्रथम योग क्रिया समाविशत ध्यान मंत्र हो गई। अनुवाद तात्पर्य सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा मैत्रेय ने विदुर से कहा हे शत्रु के संहारक यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तरमुख होकर बैठ गई केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया तथा योग क्रिया में अपने को ध्यानमग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए जिससे यह पता चल जाए कि दक्ष के द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय उसने उसके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयकर समझा। उन्होंने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे समस्त योग क्रियाओं जानते हैं, अतः सती भी उन्हें जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा, अथवा दक्ष जो समान सम्राट की पुत्री होने के कारण वह सुशिक्षिता थी। योग की इसी पद्धति में, योग की सिद्धि इसी में ही है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला दे। जो योगी सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्यागते हैं। सामान्यतः योगी पहले शरीर के भीतर श्वास साधता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर लाता है। फिर जब शरीर से ज्वाला निकलने लगे तो योगी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार इस योग की पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह तथाकथित योग पद्धति से भिन्न है, जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति एक लोक से दूसरे लोक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करने को स्वीकार करती है, और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाह रही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्विमितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वदा रघुनाथं दत्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सद्गणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकृणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि श्रीहरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्ष मनुद्य शत्रुहन क्षीतादु ऊची निशसाद शांतवात् स्पष्टा जलम पीतकुला संभुता निमिल्य योग पथम समाविष्ट। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। केसरी वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने शरीर को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। ये प्रसंग उमा अभी सती होने जा रही है, तभी तो उसका नाम सती पड़ा है। सती की प्रथा भी उसी से चालू हुई। सती होना यानी कि सत्य के लिए अपना जूठा शरीर का त्याग करना, उसे सती कहते हैं। मूल हेतु भगवान की प्रीति के लिए जब जीव अपने जूठे शरीर का त्याग करता है तो वो सत्य जाहिर करने के लिए कि हम सत्य कौन, हमारी सत्यता क्या है। शरीर जूठा नहीं है, फिर भी वो सत्य का प्रतिबिंब है। बिंब तो आत्मा होती है और उस पर काम चलाओ जैसे वस्त्र पहना दिया जाता है ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। हम वस्त्रों पर वस्त्र ही पहनते हैं, अपने नग्न शरीर को बचाने के लिए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ये नग्नता जो समाज में घृणा पात्र है, घृणित, जो घृणा यानी कि तिरस्कार, सामान्य लोग यदि नग्न रहते हैं तो बहुत घृणित कहलाते हैं, घृणा पात्र, घृणा यानी कि तिरस्कृत होते हैं। क्यों? जब बच्चे नग्न होते हैं तो कोई परवाह नहीं करता, तो समाज में भी ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि उसके और कुछ और सत्यता है बनी है। बच्चों में विकार नहीं, विकृति नहीं, देहती वृत्ति 12 साल से शुरू हो जाती है, विकृति। तो ये कुदरत का क्रम, अपनी स्वतंत्र इच्छा जाहिर करने के लिए, स्वतंत्र उपभोग करने की इच्छा वहीं से जागृत होती है, तब नग्नता तिरस्कृत है। जब बच्चे निर्दोष कहलाते हैं, नंगे फिरते हैं फिर भी निर्दोष कहलाते हैं, तो बच्चों का नंगा होना और जिसकी उपभोग करने की इच्छा जागृत हुई है उसका नंगा फिरना आसमान जमीन का फर्क होता है। पशु तो नंगे फिरते हैं, तो सती जो उमा, पार्वती, ये सब नाम बाद में आए। उमा जब ये दक्ष की पुत्री, दाक्षायणी का शब्द अगले श्लोक में किया गया है, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, वो तो शिवजी टोना मारते थे उसे। क्यों मारते थे पता है? उसे दाक्षायणी क्यों बोला? क्योंकि वो अपने आप को अपने पिता से संबंध रखती थी जिसने जूठा देह दिया, और जब पिता ने शिवजी का अपराध किया तब उसे लज्जा आने लगी कि ये परम सत्य को नहीं जानता है, अपने बच्चों पैदा करने की कुशलता में ही वो इतना अहंकारी बन गया कि शिव जी का आदर करता है। दक्ष यानी कुशल, एक्सपर्ट, किसमें? बच्चे पैदा करने, वही तो प्रजापति कहलाता। लेकिन उसे वास्तविक ज्ञान उसका चुरा गया। वो चाहे कितना ही कुशल हो सब बाबत, धर्म की बहुत सारी बाबत में कुशल था, और धर्म को आगे टकाने के लिए ही बच्चे पैदा करने की आवश्यकता होती है। कुत्ते बिल्ले जैसे बच्चे पैदा करने के लिए तो प्रभुपाद जी काफी टोना मारते हैं। ये सारा समाज आजकल कुत्ते बिल्ली है, और फिर से नग्नता में ही जा रहा है, नंगा। यानी कि जब भद्र समाज होता है, भद्र यानी सुशिक्षित, आत्मा का विकास करने के लिए जो गृहस्थ समाज बनाते हैं वो भद्र समाज के। ये आजकल का समाज तो अभद्र, यानी कि किसी की कुशलता नहीं चाहता, सब अपने नग्नता का प्रदर्शन करना चाहते। तो यहां सती होना, दक्ष की पुत्री उमा अब सती हो रही है सत्य का परिचय करने के लिए। जब पिता ने शिव जी का अपराध किया तब उसकी आंखें खुल गई। हाँ, अभी मुझे पता चलता है कि शिव जी मेरे पति मुझे दाक्षायणी कह के क्यों बुलाते थे। दक्ष की पुत्री, एक दक्ष की पुत्री, ऐसे ऐसे प्राइवेट में जब एकांत प्रभुपाद जी लिखते तब दाक्षायणी कहते थे, शिव जी टोना मारते थे उनका। तेरे पिता पर तू कितनी आसक्त है, देख तो सही, दौड़ी जाती है। हमें तो इनविटेशन आया ही नहीं, हमने किसी ने बुलाया ही नहीं, हमें क्यों जाना चाहिए वो यज्ञ में। लेकिन वो सोच, उसकी सोच कुछ और थी। उसने देखा कि अपनी सहेलियां जो अन्य देवताओं की पत्नी इत्यादि थी, तो अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर वो यज्ञ में भाग लेने जा रही है अपने पतियों के साथ। तो क्यों मैं ना चलूं, ये तो मेरा ही घर है, ये तो मेरे ही पिता है, मुझे देखकर तो उनका तो रोष समझाएगा। तो शिव जी को कहने लगे, शिव जी ने कहा इसमें तेरा कोई कल्याण नहीं होगा, मत जा। मैं तो जाना ही नहीं चाहता, लेकिन तू भी मत जा, क्योंकि अब तू मेरे साथ मेरी पत्नी बनी है, इसलिए तेरा भी कोई कुशल होने वाला नहीं है। लेकिन अपने देहात्म भान से बहुत आकर्षित थी, इसलिए ओ कुछ नहीं तो हम अपनी माँ के पास तो जाएंगे, यदि पिता गुस्से में आ गए तो क्या हो गया, हम माँ के पास जाओ। तो इतना शिव जी के मनाने पर भी वो मानी नहीं, तो जाना चाह तो वो मानुनी कहलाती है, उसका नाम मानुनी, अपना ही मन का करना, मनस्वी मानुनी इत्यादि कहना। तो थोड़ी इंडिपेंडेंट बन गई, पर फिर भी उसे ये शिक्षा मिल रही है। अभी गई तो देखते ही, बेटी को देखते हुए शिव जी को गाली बकने लगे, दक्ष शिव जी को गाली बकने लगे। अभी कुछ बोलेगा, जब कोई पागल होकर गाली बकने लगता है तो वो तो सुनना भी नहीं चाहे। तो सती गई अपनी माँ के पास, तो माँ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका गुस्सा भारी था दक्ष का, किसी ने उसे आवकार नहीं दिया। सही, इतना सारा होते हुए अब उसे अकल आने लगी कि हाँ देखो मैंने माना नहीं, हाँ, और ये तो मेरे पिता अपराधी बन गए, शिव जी का महत्व नहीं जानता, भगवान इनका महत्व नहीं जानता, वो स्वयं को कुछ नहीं समझती, लेकिन भगवान की अर्धांगिनी है, वो माया है। तो अध्यात्म में वो अपने आप को भगवान की बहिरंगी शक्ति होते हुए वो अपनी अंतरंग स्थिति को जानती है कि मैं तो भगवान का अंश, भगवान की शक्ति, बहिरंगी शक्ति, और शिव जी भी भगवान का रूपांतरित स्वरूप है। तो इस भौतिक दुनिया के माँ बाप के रूप में हम लोग हैं, और ये सीधा भगवान का ही अनादर कर रहा है, उनकी भर्त्सना कर रहा है। ऐसे अपराधी जीव के पास रहना ठिकाना, लेकिन फिर भी जब उसे दाक्षायणी शब्द याद आ गया कि हाँ अभी मुझे पता चलता है शिव जी मुझे टोना क्यों मारते थे, क्योंकि मेरा ये शरीर वो अपराधी पिता से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं भी अपराधी बन गई, ऐसा शरीर धारण करके। तो देखो अपराध भी कैसे उतरता आता है। अपराध जैसे कृपा भी उतरती आती है उसी तरह अपराध भी उतरते आते हैं पासों में। कोई अपना शरीर संबंधी व्यवहार में किसी के साथ झगड़ता है तो हम भी उसका पक्ष लेकर जाने बुझे उसके साथ झगड़ने लगते हैं, सही? तो अपराध पास और होता है। आपने तो अपराध नहीं किया तो आपको लड़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन होता है क्योंकि ये मेरा भाई है मैं लड़ूंगा। तो अपराध भी डिसेंड होता है, उतरता है। जैसे कृपा भी भगवान से आती है उसी तरह अपराध भी चढ़ते हैं। ऐसा संग नहीं करना चाहिए जो हमें भी अपराधी बनाता है। सत्य का परिचय इसीलिए ये सती होकर उमा कराती है। तो दाक्षायणी ये नतीजे पर आती है कि मैंने ऐसे अपराधी पिता से ये प्राप्त किया शरीर भी अपराधी है, मैं तो शरीर नहीं, तो मुझे ये शरीर का त्याग करना चाहिए, मुझे बिन अपराधी शरीर चाहिए। जब उसने अपने पिता को सत्य का परिचय करवा के लिए सुना दिया, काफी सुना दिया, सत्य बोल गई, लेकिन ये अपराधी शरीर को हटाने के लिए योग में ध्यान मस्त बैठ जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो तरीके से हमें ये प्रमाण मिलता है कि सती योग की पद्धति जानती थी, योग का सारा उद्देश्य जानती थी। शिव जी योगी है, वो हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। और किसका ध्यान करते हैं? महाशंकर शंकर जाप करते हैं, क्योंकि शंकर क्षण से शंकर हुए हैं परावर्तन। जैसे दही दूध में से पैदा होता है उसी तरह क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, विशेष योगा एक विशिष्ट योग में गुणों के अवतार, गुणावतार में शिव जी विष्णु जी का तमोगुण का अवतार कहते हैं। तो विशेष योगा विशेषता क्यों? क्योंकि जब योग में है तो जूठा शरीर तो होना ही चाहिए जो गुणों में आवृत है। तो ये गुणों को नियंत्रित भी करना है, लेकिन ऐसा स्वरूप जब भगवान ने लेने को चाहा तब शिव जी के रूप में आए। इसलिए विष्णु जी का तमोगुण का अवतार शिव कहलाता है। वो जगत के कल्याण के लिए दोनों माँ बाप शिव जी और पार्वती, क्योंकि पार्वती नाम अब मिलता है सती होने के बाद, जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी तब पार्वती कहलाती है। तो पहले उमा थी, बाद में सती हुई और बाद में पार्वती। तो ये दोनों शिव और पार्वती अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, सारी सृष्टि को पैदा करने के लिए, सृष्टि में जीव को शरीर देने के लिए माँ बाप के रूप में आए। ब्रह्म संहिता में भी कहा है कि इमा उमेश्वरी महेश्वरी प्रजा, महेश्वरी प्रजा महाईश्वर महेश्वरी। शिव जी महेश्वर है और पार्वती महेश्वरी है। और बीज प्रदान पिता के रूप में तो भगवान ही स्वयं होते हैं।
तो शिवलोक शिव योग यानी कि लिंग योनि का आत्मित कहा जाता इमा महेश्वरी प्रजा, लिंग और योनि के रूप में। ब्रह्म संहिता में यह बताया कि भगवान विष्णु जब दृष्टिपात करते हैं किस पर, ये भौतिक सृष्टि जब पैदा नहीं होती लेकिन भौतिक सृष्टि के सारे तत्व जो प्रधान प्रकृति कहलाते हैं उस पर दृष्टिपात करते हैं। वो वैकुंठ जगत के एक कोने में, वैकुंठ जगत के एक कोने में बादल की तरह ये अप्रकट स्थिति में रहता है, उस पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टि में सारे जीवों जो भगवान से विरोध इच्छा करने वाले थे वो अंदर दाखिल होते हैं और ये सारी दृष्टि का रूपांतर लिंग के बनता है, वो सदाशिव के बनता है। और सदाशिव लिंग योनि महद्योनि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति जातासां महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। भगवत गीता में भगवान कह देते हैं, तो भगवान कृष्ण जो यहाँ महाविष्णु के अवतार में पुरुषावतार के रूप में आए हैं, एक भौतिक सृष्टि जो अप्रकट थी वैकुंठ जगत में तो उस पर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टि का रूपांतर लिंग यानी कि सदाशिव में होता है, जो महद्योनि यानी कि भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री दुर्गा और राधारानी का बहिरंगी रूप है। तो ब्रह्म संहिता की ये इमा महेश्वरी प्रजा का विस्तृत वर्णन करने के लिए जीव गोस्वामी ये सम्मोहन तंत्र का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सम्मोहन तंत्र में पार्वती उमा कहती है मैं ही राधा, राधा मैं, राधा यानी कि मूल मेरा अंतरंग रूप मैं। इसलिए हम शिव और पार्वती दोनों का अनादर नहीं करते, लेकिन भौतिक सृष्टि में भगवान ने उनको गुणों में स्थान दिया, यानी गुणों में आवृत हो। माया ही यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय माना सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहं जानामि। माया जो दुर्गा है ये तीन गुणों से जो जो कुछ पैदा करती है, जगदंड सतानि सूते कितने सतानी सतानी सैकड़ों ब्रह्मांड पैदा करती है और हर एक ब्रह्मांड सत्व रज और तमोगुण से संचालित करती है, लेकिन जीवात्मा के रूप में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आए, सर्वप्रथम जीवात्मा आए तो वो कहते कि मुझे सत्वगुण का अवलंबन करके ही मैं परसत्व जो अध्यात्म कहलाता है, मेरा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, उस पर मैं गौर कर सकता हूँ और उसके बाद विशुद्ध सत्वम जो गोविंद है उनको मैं बच सकता हूं। यानी कि वो हमें पद्धति बता देते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी है। देखो उमा स्वयं सती बनकर अपने अध्यात्म में स्थिर रहकर योग के बल के द्वारा अपना शरीर पिघला देती है, अग्नि योग की अग्नि उसे भस्म करना चाहे, अपना शरीर का त्याग करना चाहे, वो स्वतः स्वेच्छा से योग बल के द्वारा व्यक्ति शरीर का त्याग कर सकता है, उसका उदाहरण। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये झूठे शरीर का त्याग करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस पर हमें ध्यान धरना चाहिए, किस पर समाधि धारणा और समाधि। तो ध्यान धारणा और समाधि जो अष्टांग योग में
छह सात और आठवां क्रम उसका उद्देश्य किस पर ध्यान, ध्यान हो तो भगवान, धारणा यानी कि निश्चयात्मक बुद्धि का उपयोग करके भगवान में स्थिर रहना, और समाधि ये बुद्धि को स्थिर करके ही ध्यान की आवश्यकता है। सही, तो इस ढंग से जब हम ये समझते हैं कि ये शरीर त्याग करने की जो प्रथा, जीवात्मा को ध्यानमग स्थिति में ऊपर उठाते हैं और ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं और उसकी ज्वाला से ये खोपड़ी को भेदता हुआ योगी धारणा के द्वारा निश्चित गंतव्य स्थान पर जा सकता है। ये योग की पद्धति सिद्ध है, लेकिन कलयुग के लिए ठीक है। सर्वोत्तम योग तो भगवान कृष्ण का नाम जाप करके ही नाम का परिचय करने को कराता है, और भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ योग को स्थापित करता है। अंत में तो सबको परम सत्य जो भगवान है, भगवान का नाम है, उनका ही स्मरण बनाने की आवश्यकता होती है। तो समाधि में भी यदि भगवान का स्मरण न हो तो गंतव्य स्थान कैसे बन सकता है। तो इस ढंग से ये योग की पद्धति स्वीकृत है, ऑथोराइज्ड है, लेकिन आजकल के जो योग पद्धति के बारे में प्रभुपाद जी टीका करते हैं वो तो सिर्फ जिम्नेशियम में जाना एक्सरसाइज करने को बराबर है, शरीर की कोशिकाओं को तंदुरुस्त रखने के लिए योग पद्धति करते हैं, आत्मा को अपने गंतव्य स्थान में ले जाने के लिए कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो ये अष्टांग योग की पद्धति पार्वती उमा जानती थी, क्योंकि शिवजी परम योगी थे और दक्ष की पुत्री भी सब शिक्षाओं में प्रवीण रहती, इसलिए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो किसी को कोई प्रश्न है? जय जगद्गुरु प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय।